लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रोम के जेमेली अस्पताल में संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य में सुधार जारी है। वे पहले की अपेक्षा बेहतर हैं। अपने स्वास्थ्य सुधार के इस स्थिति में भी उन्होंने हमेशा की तरह अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह को जारी रखते हुए अपनी धर्म शिक्षा माला में निकोदेमुस का यीशु के संग मिलन पर चिंतन किया। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला में कहा कि हम इस धर्म शिक्षा माला के द्वारा सुसमाचार में चर्चित उन मिलनों पर चिंतन शुरू करेंगे जो हमें यीशु से मिलने वाली आशा को समझने में मदद करती है। वास्तव में मिलनों में हम अपने को आलोकित होता पाते हैं जो हमारे जीवन में आशा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, हमारे संग ऐसा हो सकता है कि दूसरे हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को दूसरी निगाहों से देखने में मदद कर सकते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा कहे जाने वाले साधारण शब्द हमें अपने दुखों से परे जाने में मददगार हो सकते हैं। बहुत बार हमारा मिलन शांतिमय भी हो सकता है, जहां हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की वे परिस्थितियां भी हमें जीवन में आगे बढ़ने को मदद करती हैं। संत पापा ने कहा कि मिलन की पहली कड़ी में हम निकोदेमुस का यीशु के संग मिलन पर चिंतन करते हैं, जिसकी चर्चा संत योहन अपने सुसमाचार के तीसरे अध्याय में करते हैं। मैं इस दृश्य के द्वारा शुरू करता हूं, क्योंकि निकोदेमुस की कहानी हमें इस बात की ओर इंगित कराती है कि हम अपने जीवन के अंधेरे से बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं और साहस में यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। संत पापा कहते हैं कि निकोदेमुस रात के अंधेरे में यीशु से मिलने जाते हैं, जो मिलन हेतु असामान्य है। संत योहन के शब्दों में हम संकेतिक चीजों को पाते हैं। यहाँ रात शायद निकोदेमुस के हृदय में व्याप्त अंधेरे की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। एक व्यक्ति जो अपने को संदेह के अंधेरे से घिरा पाता है, ऐसी परिस्थिति में वह यह नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है और वह अपने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने को अयोग्य होता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यदि हम अंधेरे में होते तो निश्चित ही ज्योति की खोज करते हैं। इस भांति संत योहन अपने सुसमाचार के शुरू में इस बात की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि दुनिया में ज्योति का आगमन हुआ जो सभी लोगों को प्रकाशित करती है। निकोदेमुस यीशु की खोज करते हैं क्योंकि उन्हें यह आभास होता है कि वे उनके हृदय में व्याप्त अंधेरे को दूर कर सकते हैं। यद्यपि सुसमाचार हमारे लिए इस बात का जिक्र करता है कि निकोदेमुस यीशु के द्वारा कही गई बातों को तुरंत नहीं समझ पाते हैं और इस प्रकार हम उनके बीच की वार्ता में कई नासमझी और बहुत सारी विडंबनाओं को भी पाते हैं, जो सुसमाचार लेखक योहन की विशेषता को व्यक्त करती है। निकोदेमुस यीशु की बातों को नहीं समझते हैं क्योंकि वे उन्हें अपने ही तर्क वितर्क और मापदंडों के अनुरूप देखते हैं। वे एक उच्च ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। समाज में उनकी एक सार्वजनिक भूमिका है। वे यहूदियों के नेताओं में से एक हैं, लेकिन अब शायद ये सारी बातें उनके लिए अर्थ नहीं रखती हैं। निकोदेमुस को लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वे अपने अंदर बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसकी शुरुआत कहां से करें। संत पापा ने कहा कि जीवन की कई परिस्थितियों में यह हम सबों के साथ भी होता है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि हम अपने को अपनी कठोरता में अपनी ही बातों, व्यवहार और सोचने विचारने के तौर तरीकों में ही बंद कर लेते हैं, तो हम अपने को मार डालने की जोखिम में डाल देते हैं। हम अपने जीवन में परिवर्तन की क्षमता को पाते हैं, जो हमें नए तरीके से प्रेम करने के योग्य बनाती है। वास्तव में यीशु निकोदेमुस को एक नए जन्म की बात कहते हैं, जो न केवल हमारे लिए संभव है, बल्कि यह हमारे जीवन यात्रा के लिए जरूरी भी है। यदि सच कहा जाए तो यहाँ हम एक अभिव्यक्ति अनुत्थान को पाते हैं, जो अपने में अस्पष्ट है, जिसे हम ऊपर से या नए शीरे से पुनः के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। धीरे धीरे निकोदेमुस इन दो बातों की महत्वपूर्णता को समझेंगे। यदि हम अपने को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते, जिससे वे हम में नयापन लाएं, तो हमारा नया जन्म होता है। हम उस जीवन को पुनः प्राप्त करते हैं जो शायद हमारे अंदर खत्म हो रहा था। संत पापा कहते हैं, मैंने निकोदेमुस के जीवन से शुरू करने का चुनाव किया, क्योंकि वे एक व्यक्ति हैं जो अपने जीवन के द्वारा हमें यह दिखलाते हैं कि यह परिवर्तन हमारे लिए संभव है। निकोदेमुस को इसमें सफलता मिलती है। अंत में वे उन लोगों के संग होते जो यीशु का शरीर मांगने के लिए पिलातुस के पास जाते हैं। निकोदेमुस अंततः ज्योति में आते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, और अब उन्हें रात में रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि परिवर्तन कई बार हमारे लिए भयभीत करने वाला होता है। एक ओर वह हमें आकर्षित करता है, कभी कभी हम उसकी चाह भी रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम अपनी सुख सुविधाओं में ही रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि आत्मा हमें भयों का सामना करने को प्रोत्साहित करती है। यीशु निकोदेमुस को, जो इसराइल में एक शिक्षक थे, याद दिलाते हैं, इसराइली भी मरुभूमि में चलते समय डरे हुए थे, और वे अपनी चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर उन भयों ने जहरीले सांपों का रूप ले लिया। इस भय से मुक्त होने के लिए उन्हें उस पीतल के सांप को देखना पड़ा, जिसे मूसा ने एक खंभे पर लटकाकर रखा था, अर्थात उन्हें ऊपर देखना था और उस वस्तु के सामने खड़ा होना था जो उन्हें डर की ओर इंगित कराती थी। कोई चीज जो हमें डराती है, उसका सामना करके ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हम सबों की तरह निकोदेमुस भी क्रूस की ओर देख सकते हैं, जहां मृत्यु पर विजय पाई गई, जो हमारे सभी भाइयों की जड़ है। आइए हम भी अपनी नजरें उनकी ओर उठाएं, जिन्हें उन्होंने छेदित किया था। आइए हम भी अपने को यीशु से मिलने दें, उनमें हम अपने जीवन में परिवर्तनों का सामना करने और फिर से नए जन्म की आशा को पाते हैं।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य में मामूली सुधार जारी है। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने संत पापा की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट दी है। पिछली रात संत पापा फ्रांसिस को यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह संत पापा की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में मंगलवार शाम 18 मार्च को पत्रकारों के साथ साझा किए गए अपडेट में से एक था। उन्हें रोम के जमेली अस्पताल में देखभाल मिल रही है, जहां उन्हें 14 फरवरी को श्वसन संक्रमण और द्विपक्षीय निमोनिया के लिए भर्ती कराया गया था। बयान में कहा गया है कि संत पापा की हालत एक जटिल नैदानिक ढांचे के भीतर स्थिर बनी हुई है और उनके मोटर और श्वसन कार्यों में मामूली सुधार हुआ है। रात में गैर आक्रामक यांत्रिक वेंटिलेशन और दिन के दौरान उच्च प्रवाह ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग कम होता जा रहा है। हालांकि यह एक सकारात्मक विकास है, लेकिन इसे धीरे धीरे कमी की प्रक्रिया के रूप में सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। सभी इतालवी लोगों की ओर से आभार, स्नेही निकटता, शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं, ये वे भावनाएं हैं जो इतालवी गणराज्य के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला ने संत पापा फ्रांसिस को उनके परमाधिक्ष कार्यकाल की शुरुआत की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबोधित एक संदेश में व्यक्त की। राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला ने संत पापा को, जो 14 फरवरी से जमेली अस्पताल में भर्ती हैं, अपनी कृतज्ञता का आश्वासन दिया। इन 12 वर्षों के लिए, जिनमें उन्होंने न केवल कैथोलिक कलीसिया बल्कि समस्त मानवता की निरंतर सेवा करते हुए सुसमाचारी मूल्यों की सबसे प्रामाणिक गवाही दी है। राष्ट्रपति मत्तरेला ने विश्व पत्र दिलेक्सिट नोस को प्रेरणादायक बताया, जिसमें प्रत्येक महिला और प्रत्येक अच्छे इरादे वाले पुरुष को व्यक्तिगत लाभ की सीमाओं को पार करने और मानवीय भाईचारे के उस बंधन द्वारा खुद को दूसरों से जुड़ा हुआ मानने का निमंत्रण दिया गया है, जो भौगोलिक निकटता या सांस्कृतिक आत्मीयता के विचारों से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति मत्तरेला ने इस संबंध में उन नए चिंतन बिंदुओं को याद किया, जिन्हें महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों पर बहस के केंद्र में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों के सम्मेलन में, इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन में, G20 में संत पापा की आशा की पुनः खोज, बल और दुरुपयोग के तर्क को अलग रखने, नई प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग द्वारा खोले गए नवीनीकरण के उदाहरणों के लिए एक जीवंत आह्वान किया। राष्ट्रपति मतरेला ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के आधार और राज्यों के बीच सह अस्तित्व की सही अभिव्यक्ति कमजोर होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में संत पापा की आवाज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है। जुबली वर्ष के आरंभ में रोमन कारागार रेबिबिया में पवित्र द्वार का उद्घाटन, साथ ही आने वाले महीनों में युवा पीढ़ी के अति प्रिय धन्य कार्लो अकुतिस और धन्य पियर जोर्जियो फ्रेसाती को संत घोषित करने के निर्णय से रोम और इटली वासी संत पापा के प्रति कृतज्ञ हैं। वे सभी इटली के प्रति संत पापा की विशेष चिंता को महसूस करते हैं। अंत में राष्ट्रपति मत्तरेला ने परमाध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान संत पापा की खुशहाली के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उधर वाटिकन ने शुक्रवार 19 मार्च को बुलाहटों के लिए विश्व प्रार्थना दिवस हेतु संत पापा फ्रांसिस के संदेश की प्रकाशना की है, जो इस वर्ष 11 मई को है। संत पापा ने बुलाहटों के लिए 62वें विश्व प्रार्थना दिवस पर सभी विश्वासियों को अपने जीवन को उदारता पूर्वक दान करके आशा के तीर्थ यात्री बनने के लिए एक हर्षित और उत्साहवर्धक निमंत्रण दिया। संत पापा ने कहा कि बुलाहट एक अनमोल उपहार है जिसे ईश्वर हमारे हृदय में बोता है। यह खुद को पीछे छोड़कर प्रेम और सेवा की यात्रा पर निकलने का आह्वान है। कलीसिया में प्रत्येक बुलाहट, चाहे वह लोक धर्मियों का हो, याजकीय हो या समर्पित हो, प्रत्येक अपने प्रत्येक बच्चे के लिए ईश्वर की आशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बुलाहट यह आह्वान हमें दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने की इच्छा जगाता है। संत पापा ने युवाओं से आग्रह किया कि वे दैनिक जीवन और बाहरी दबावों की निरंतर बमबारी के बीच भी प्रार्थना में ईश्वर की आवाज सुनने के लिए समय निकालें। उन्होंने कहा, प्रार्थना करने के लिए रुकना और हमारे जीवन के लिए ईश्वर के सपनों के प्रति खुला होना साहस की बात है। बुलाहट कभी भी दिल में संग्रहित खजाना नहीं होता, इसके बजाय यह एक ऐसे समुदाय के भीतर बढ़ता और मजबूत होता है जो विश्वास करता है, प्यार करता है और उम्मीद करता है। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तियों को बुलाहट के लिए प्रार्थना करने और विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया कि पवित्र आत्मा युवा लोगों को उनके बुलाहट का स्वागत करने के लिए प्रेरित करे। उधर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में सरकारी बलों और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के बीच तनाव और संघर्ष जारी है। बातचीत के जरिए शांति स्थापित करने के कई असफल प्रयासों के बावजूद गोमा के धर्माध्यक्ष बिल्ली नुगोम्बी निगेले ने वाटिकन न्यूज को बताया कि जनवरी के अंत में संघर्ष बढ़ने के बाद से स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। फिर भी उन्होंने आबादी के उस साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की जो हिंसा के बीच इस संकट का सामना कर रही है, जो 3 दशकों से ज्यादा समय से चल रहा है। गोमा को M23 विद्रोहियों द्वारा कब्जा किए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और धर्माध्यक्ष निगेले ने बताया कि स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, सिर्फ इतना फर्क है कि युद्ध अब गोमा में नहीं है बल्कि धर्म प्रांत के दूसरे इलाकों में फैल गया है। अपहरण और हत्याएं इस नए नियम का हिस्सा बन गई है, इसलिए लोग डर में जी रहे हैं। धर्माध्यक्ष निगेले ने कहा, संघर्ष के बावजूद चालीसा काल की शुरुआत करते हुए राख बुधवार 5 मार्च को गिरजाघर ख्रिस्तियों से भरा हुआ था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।